हरे कृष्णा, कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीमद् भागवत के प्रातः क्लास में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है और भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति को उनके एक प्रश्न के उत्तर में कि जीव संसार में बंधन में कैसे पड़ता है उसको विस्तार से बताइए, जिससे हमारा और सामान्य बुद्धिमान समझदार लोगों का संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ उत्साह और जिज्ञासा पैदा हो। प्रश्न कौन कर रहा है? माताजी प्रश्न कर रही है। और प्रश्न क्या है कि घर कैसे छोड़ा जाए, और माताजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? घर वाली। हाँ, जो घर की मालिक है वो प्रश्न पूछ रही है अपने बेटे से कि घर कैसे छोड़ा जाए। तो जरा ध्यान से सुनना है कि एक माताजी को देवहूति के चरण चिन्हों में चलते हुए समय के साथ घर परिवार के झंझट को छोड़ के वृंदावन में आने का संकल्प कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले हजम कर लो इसको, क्योंकि जो बात है वो जरा भारी है, इसलिए आपको ये भोजन से पहले भूख बढ़ाने वाली कथा होती है। तो एक स्त्री पूछ रही है, अपने बेटे से पूछ रही है, सबसे ज्यादा मोह होता है बेटे में और होता है पति में और होता है पोतों में। पति तो पहले ही चला गया कर्दम मुनि संन्यास लेके, कपिल देव को शादी तो करनी ही नहीं है, पोते आने नहीं है, और बेटा ये कथा करके चला जाएगा। ये जो सेटिंग है वो ये है, पति तो पहले भगवत इच्छा से भगवत प्राप्ति के लिए बद्रिका आश्रम की तरफ चल दिए, और बेटा भी सिर्फ ये उपदेश देके चला जाएगा गंगा सागर, और माताजी फिर वहां बैठ के भजन करेगी। तो ये देवहूति माताजी के प्रश्न, तो माताजी के भक्ति शुद्ध क्या है ये बताओ। वो पहले एक अध्याय जो 29वें में शुद्ध भक्ति का निरूपण किया, फिर काल का रूप क्या है, सब कुछ काल के रूप में भगवान कैसे समय के साथ सबसे छीन लेते हैं। तो काल हमसे सब कुछ छीन ले, उससे पहले हम भगवान को पाने का प्रयास कर ले, ये बुद्धिमानी है। और तीसरा प्रश्न ये था कि संसार में लोगों का बंधन का कारण क्या है और उसके छूटने के लिए कोई साधन है, और इसको ऐसे बताइए कि लोगों का इस बंधन से छूटने के लिए इच्छा तो पैदा हो। तो आज कर्दम मुनि के पुत्र कपिल देव मां देवहूति को इस श्लोक में 60 साल से बड़ी उम्र के बूढ़ों का क्या हाल होता है घर में, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहला आसते अवमत्या उपन्यय उपन्यतस्म उपन्यस्तम ग्रहपालः एव आहारान् आम्यादि उपद्रवेत् अग्निः अप्रदीप्त अग्निः अल्प आहाराः अल्प चेष्टितः। आस्ते अवमयत्या उपन्यस्तम् गृह पाल इव आहारम् आम्यावी अप्रदीप्त अग्नि अल्प आहारः अल्पचेष्टितः आस्ते रहा रहा आता है आस्ते रहा आता है रहा आता है क्या होता है भैया तो रहता होना है चाहिए ना रहता है तो रहा क्यों है इससे कल वाले श्लोक का पहले मैं पढ़ लेता हूं अर्थ ताकि समझ में आएगा मूरख सुनिएगा मूरख परिवारिक व्यक्ति मूरख परिवारिक व्यक्ति ग्रस्त जीवन से प्राण मुख नहीं होता ग्रस्त जीवन से प्राण मुख नहीं होता यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पाले उसने जैसे पहले उसने पाला था बच्चे आपने पैदा किए आपने पाले आप बूढ़े होंगे तो बच्चे आपको पालेंगे तो जो जिनको आपने पाला है वो जब आपको पालते हैं तब घर को छोड़ना चाहिए उन्हें पहले उसने पाला वृद्ध अवस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है रूप विकृत कैसे होता है दांत गिर जाते हैं गाल अंदर चले जाते हैं आंखों से देखता नहीं है कमर में कुबड़ आती है और सारा दिन खांसता रहता है ठीक है और वो मृत्यु की तैयारी करने लगता है बुढ़ापे का मतलब मृत्यु का वारंट बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है मृत्यु का संदेश और वो कहां से शुरू होता है दो कान के पास बाल सफेद होते हैं और कान में वो बाल कहते हैं घर छोड़ो वृंदावन चलो लेकिन लोग कहते हैं कान के पास ही क्यों होते हैं क्योंकि कान में सुनाते हैं चलो 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 टाइम हो गया लेकिन बड़े बुद्धिमान लोग हैं दो रुपये से काला कर देते हैं बाल को और कहते हम सुना ही नहीं हमें महाराज दशरथ के जीवन में दो बाल काले देख के राज छोड़ने को तैयार हो गया क्या महाराज के पास पैसे नहीं थे दो रुपये का काला लगाने के बुढ़ापा मृत्यु की तैयारी का संदेश है तो इस व्यक्ति वो ये व्यक्ति आस्ते फिर भी आस्ते का मतलब है अभी उसकी आस्था घर में है आस्ते को ऐसे समझ लीजिए कि उसकी आस्था अभी भी उसी घर में है उस घर में रहना चाहता है उसको छोड़ना नहीं चाहता है कैसा है उस घर वालों का उसके साथ व्यवहार आवमत्या उपेक्षा भाव से उसके घर वाले उसको कोई प्रेम से रखने में खुश नहीं है उपेक्षा उपेक्षा का मतलब चुप करके बैठूं बहुत हो गया सुना सुना ठीक है खा लो जो दे दिया है बस हो गया ये ऐसे बात करते तो अवमत्या का मतलब उपेक्षा भाव से उपेक्षा का मतलब जरा ज्यादा आदर न देते हुए अनादर रूप से। पता लगना चाहिए कि मैं घर में भार हूं। आपको सबको मालूम है, कोई ऐसा मेहमान आता है तो हम समझते कब जाए तो जान छूटे। तो ये ऐसा खटिया के ऊपर पड़ा हुआ बूढ़ा न खटिया छोड़ता है न घर में सुख से रहना देता है, ऐसी अवस्था उसकी होती है। उपनयस्तम, उपनयस्तम जो कुछ उसको दिया जाता है खाने के लिए, कैसे खाने के लिए दिया जाता है, जरा उपेक्षा से, आदर से नहीं। ए जा बूढ़े को दे, किया जा 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 उठा ले जा, दो दो रोटी बूढ़े को दे दे, ये गरम नहीं है, उसके दांत नहीं है, ठंडी कल की है, ए खाएगा, लेके जाओ दे के आ जाओ, क्या कौन करेगा उसके लिए गरम। ऐसा अगर कोई देने के लिए ये भाव से दे तो वो खाने वाला कैसा लगता है, जो खा रहा है बूढ़ा उसको क्या मानना चाहिए। ये भागवत में कपिल देव कहता है गृह पाल, बोलिए, घर का पालन करने वाला किसको बोलते हैं गृहपाल, कुत्ता। गृहपाल का मतलब कुत्ता। तो कुत्ता इव इव, बोलिए इव, सदृशा कुत्ते के समान, सदृशा आहारन खाते हुए। अब जब कोई प्रेम से खिलाएगा नहीं, सुने होगा नहीं, रूखा सूखा देगा, टाइम बाय टाइम देगा, तो खाने वाले का क्या हाल होना चाहिए, खाने वाला कैसा हो जाएगा, बोलिए, खाने वाला हो जाएगा आम यावी, बोलिए आम यावी, रुगण मतलब रोगी, वो खाने वाला रोगी हो जाएगा। प्रेम से तो कोई खिला नहीं रहा है, तो जैसे वैसे दे रहा है, तो उससे उसको रोग, तो कौन सा रोग उसको होगा भाई, रोग कौन सा उसको होगा, तो उसका नाम है अप्रदीप्त अग्नि। बेचारे की भूख ही मर जाती है, हाँ, अजीर्ण मंद अग्नियता, इसका मतलब भूख उसकी मर जाती है, जो देने वाले का भाव को देख के ही उसकी भूख मरने लगती है और बीमार हो जाता है, ठीक है। अब जब भूख मरती है तो कितना बेचारा खाएगा, अल्प थोड़ा सा आहार आहा भोजन। अब जब भोजन थोड़ा खाएगा तो उसको कहोगे कि बाबा तुम जरा उठ के दरवाजे खोल दो, कोई आया है, तो वो क्या कहेगा, अरे उठा नहीं जाता, अल्प थोड़ा चेष्टता, उसके कार्य उसका उत्साह कम हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं काम कर पाता है, ये बच्चे को उठा के बाबा घुमाओ, रो रहा है, अब बाबा ही नहीं उठ रहा है तो बच्चे को कहां से उठाएगा, बाबा उठे तो बच्चे को उठाए ना, तो बाबा का उठना ही बंद हो गया। क्यों बाबा का उठना बंद हो गया, क्योंकि खाना कम हो गया। खाना क्यों कम हो गया, क्योंकि खाना पकाने की शक्ति कम हो गई। खाना पकाने की शक्ति कम क्यों हो गई, क्योंकि खिलाने वाले के खिलाने में कोई प्रेम नहीं है, वो इतना जले हुए हृदय से खिलाता है कि खाने वाले का अब भी अंदर जल जाता है, तो उसकी ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब इसका अर्थ पढ़े, ये किसी और के लिए नहीं, हम सबके लिए है, ये हम सबकी स्थिति एक न दिन एक होने वाली है। तो आइए तो इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या अर्थ में लिखा है। वो का मतलब आप ये बोले हम, आप ये पढ़िए इसको, हम घर पर वो घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है। अरे कृष्णा, ये भागवत पढ़ रहा हूं भैया मैं। वो घर पर पालतू कुत्ते की तरह, पालतू कुत्ते का मतलब रस्सी बंधी होती है ना पालतू कुत्ते को, उस बिचारे ने घर के मोह की रस्सी अपने गले में बांध दी, अपने गले में उसके मोह की ऐसी रस्सी पड़ी हुई है, पुत्र पोतों की कि वो पालतू कुत्ते जैसा बेचारा हो गया है। वो घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंद अग्नि जैसे अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वो केवल कुछ और भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तो ये अवस्था एक दिन हमारी होने वाली है, ठीक है। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा असक्त होना पड़ता है और जब उसे परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पहला लाइन है प्रभुपाद जी का तात्पर्य का। पहले कथा भागवत के पहले स्कंद से विदुर आया था हस्तिनापुर में, इस प्रसंग में कथा हो गई। हाँ? हो गई ना। उसने राजा को आके कहा था कि कुत्ते की तरह भीम के टुकड़ों के ऊपर क्यों पल रहे हो जिसने तुम्हारे 100 पुत्र मारे हैं। तो उससे कपिल देव भगवान है और भगवान के भक्त साधु, इनका काम होता है हमको अज्ञानता की नींद से जगाना, अज्ञानता की नींद से जगाना। और अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए साधु लोरी नहीं देगा कि तुम सो जाओ, वो चुंटी मारेगा। साधु का काम है दुखती जगह के ऊपर थोड़ा सा जोर से दबाए ताकि आपको दर्द का पता लगे। साधु मनोरंजन के लिए नहीं है, गा के सुलाने के लिए नहीं है, लेकिन ठोकर मार के जगाने के लिए है। तो यहां कपिल देव अपनी मां को कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था हरेक व्यक्ति को जो ग्रस्त में आजीवन रहने का सोचता है उसकी ये अवस्था निश्चित होने वाली है। इस अवस्था का किस किस को अनुभव है, हाथ ऊपर करेंगे। एक, बस, दो, तीन। अरे भैया वो माता जी देखो दोनों हाथ ऊपर है उनके। ये असल में अनुभव करने का विषय है, समझने का विषय है। ये कथा तो सतयुग में कही जा रही है, ये कथा तो अभी की नहीं है। तभी भी ऐसी अवस्था होती थी तो कलयुग का क्या हाल होगा। ये तो कथा की जा रही है, तब का युग तो दूसरा था। तब तो माता पिता का सम्मान था, तब तो पढ़ने जाते थे बच्चे, तो गुरुकुल में सिखाया जाता था मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तेरे माता पिता तेरा गुरुजी पूजने हैं। अभी स्कूल में कोई ऐसी शिक्षा मिलती है क्या। तो अब तो ऐसी स्थिति और बिगड़ी हुई है कि घर के अंदर बुढ़ापे में रहना बहुत मुश्किल हो गया। इसका प्रमाण क्या है, ओल्ड एज होम। जितने बूढ़ा आश्रम बने हुए हैं दुनिया में, ओल्ड एज होम वेस्टर्न कंसेप्ट है, ओल्ड एज होम इंडियन कंसेप्ट नहीं है। वो वृद्ध आश्रम, ये बूढ़ों के जितने भी घर बने हुए हैं, इस बात का प्रमाण है कि बच्चे अपने माता पिता को पाल नहीं सकते। कलयुग के आने से पहले महाराज युधिष्ठिर के पास कलयुग आया था, तो महाराज जब अपने भजन चिंतन में 2 घंटे बैठते थे तो अपने चारों भाइयों को बोलते थे, आप कोई आए तो उससे उसकी शंका का समाधान कर देना, मेरे भजन में बाधा नहीं डालना, लेकिन उनको उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके न्याय में भी देर नहीं होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति जो कलयुग था वो सामान्य व्यक्ति की तरह भागता हांफता हुआ आके महाराज के दरवाजे पे खड़ा हुआ। भीम खड़ा था दरवाजे के ऊपर, बोला महाराज से मिलना है। बोला महाराज तो अभी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण के चिंतन में है, आप बोलिए, आपका कोई समस्या है प्रश्न है तो पूछिए, मैं यहां खड़ा हूं आपका सेवा करूंगा। बोला आप प्रश्न पूछते हैं तो सुन लीजिए, मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा एक व्यक्ति ने कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा डब्बा डाला पानी का, पानी भर के निकाला और 8-9 बर्तन थे सारे भर गए। बोला अच्छा शक्तिशाली आदमी होगा। भीम ने कहा हमारी तरह 10 के 50 मटका भर दे इतना पानी मैं निकाल सकता हूं तो अच्छी बात है। बोला ये तो ठीक है, लेकिन जब वो 8-9 मटके भरे थे वो वापस उस डब्बे में डाले तो डब्बा आधा भी नहीं था। बोला ऐसे कैसे, एक ही डब्बे से 8-9 मटके भर गए और 8-9 मटके उल्टे उसी डब्बे में डाला, डब्बा आधा भी नहीं था। बोला ये आश्चर्य महाराज से पूछना। तो ओ तो आगे गया तो अर्जुन खड़ा था, बोला नहीं महाराज से मिलना है। बोला अभी समय नहीं है महाराज, आप बोलिए क्या समस्या है आपकी, समाधान करें। भीम ने कहा इसका अर्थ मुझे नहीं आता है, आप जाइए महाराज के पास, आगे बढ़िए। तो भीम को जाके अर्जुन के पास उसने कहा मैं आ रहा था, एक बहुत सुंदर खेत था, खेत के चारों ओर सुंदर बाड़ दी हुई थी और मैंने देख, बोला बाड़ दी थी खेत में तो बड़ा अच्छा कोई किसान होगा कि खेत में कोई आके पशु उसको खराब ना कर दे तो उसका प्रोटेक्शन किया होगा। बोला वो तो सही है, लेकिन वो खाड़ खे जो बाड़ थी ना वो खेत को खा रही थी, वो खेत का सारा कुछ उजाड़ रही थी। बोला ऐसे कैसे हो गया। बोला हाँ ऐसे था, बाढ़ खेत को खा रही थी। बोला खा रही थी, प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, आगे बढ़िए। नकुल को कहा कि आ रहा था मैं, गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया। बोला अच्छा है, बछड़ा जन्म देता है तो उसके मालिक कहते ये मुसीबत इसको कौन पालेगा, बछड़ी है तो दूसरी गाय होगी दूध देगी तो उसको तो खुश होंगे। बोला नहीं गाय बछड़ी को खा गई। अरे गाय कभी बछड़ी को खाती है। बोला खा गई खा गई। बोला ऐसा होता तो नहीं। बोला ऐसा था मैं देख के आया। चौथे सहदेव के नकुल के पास खड़े होके कहता है महाराज से एक प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न है। बोला कहीं से मैं आ रहा था, सुई के छोटे से सोराख के अंदर से एक आदमी ने हाथी को गुजार दिया। बोला हाथी सुई के छोटे सोराख से। बोला हाँ निकल गया लेकिन पूंछ हाथी की अटक गई। बोला हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। बोला हमारा ये मैं देख के आया हूं दर्शन बहुत बड़ा। ये प्रश्न का प्रश्न तो आप महाराज से जाके पूछिए। तो महाराज पर्दा दिया हुआ था पीछे बैठे थे, इसने महाराज को बाहर से ही कहा महाराज 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 मैं रास्ते से आ रहा था, पहाड़ी रास्ता था, एक आदमी चल सकते, इतनी पगडंडी थी, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे, रास्ता बंद था। महाराज आश्चर्य तो ये हुआ, कहीं से कोई एक साधु आया, अपने गमछे से एक धागा निकाला, पत्थर को बांधा, ऐसे पत्थर को फेंका, पत्थर दूर चला गया, रास्ता खुल गया। महाराज ने बोला पकड़ो पकड़ो इसको मत जाने दो। तो चार भाई आए तब तक ये भाग गया। चारों भाई आके बैठे युधिष्ठिर महाराज के पास और पूछा कि महाराज कौन था आप पकड़ने को कह रहे थे। बोला कलयुग था, हमको सावधान करने आया था। तो भीम ने कहा कि हमारे को यह प्रश्न पूछे इसका उत्तर क्या है बताइए महाराज। तो भीम ने अपना प्रश्न दोहराया जो उसने पूछा था भीम से कलयुग ने। क्या पूछा था भीम से कलयुग ने बोलिए। कुएं से पानी का एक डब्बा 5-9 डब्बे भर गए और सब डाले तो एक आधा पड़ा था। तो इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने दिया, कल जो कह रहा था एक पिताजी कमाता है 8-9 बच्चे पालता है, सबको पढ़ाता है खिलाता है घर बना के देता है शादी करता है, और जब पिताजी बूढ़ा हो जाता है तो 9 के 9 मिलके एक पिताजी का पालन पोषण नहीं करेंगे और बाल्टी आधी की आधी रहेगी। ये कलयुग का पहला प्रभाव है। एक बाप 2-4 बच्चे जितने भी है सबको पालन पोषण करता है कि नहीं करता है, लेकिन 4-5 इकट्ठे होके एक पिता को नहीं पाल पाएंगे। ये कलयुग का भयंकर परिणाम है कि 4-5-7 होते हैं तो वो भी हमने देखा है कई घरों के अंदर ऐसी स्थितियां हैं कि बारी बारी में किसी के घर पे जाके रहना है। एक भाई के घर, हमारे घर में 2 महीने पूरे हो गए, आप जाइए आप। ऐसे माँ कहे कि बेटा तुम्हारा 2 महीना पूरा हो गया, अब तुम घर से जाओ, जन्म से तो काम चलेगा? जहां एक कहा एक हमने सत्कथा बताई, बेचारा एक रोता हुआ आया, बोला हमारे पिताजी ने, हम 9 बच्चे थे, सबको पढ़ाया लिखाया, दुकान खोल के दिए, घर बना के दिए, शादी की, और जब स्वयं बूढ़ा हुआ तो हम में से एक भी उसका पालन नहीं कर पाया, बूढ़ा आश्रम में उसको छोड़ के आए। और यहां कपिल देव कह रहा था ऐसी स्थिति सबकी होने वाली है कलयुग में, इसलिए बुद्धिमानी क्या है? प्रभुपाद ने कितना सुंदर एक शब्द कहा, हम ऐसा घर बनाते हैं सारी दुनिया रह सकती है, इसलिए बुढ़ापे में घर छोड़ के आ जाइए, वृंदावन में आइए, भगवान का प्रसाद खाइए, और उत्साह के साथ आपको प्रसाद खिलाएंगे ताकि आग पी अग्नि ठंडी न पड़ जाए, और आप जरा ज्यादा खा के कुछ सेवा भी कर सके। घर में तो सेवा होगी नहीं, क्योंकि वहां उपेक्षा से दिया जाता है, यहां जरा प्रेम से खिलाया जाए प्रसाद। हरे कृष्णा। आप भीमसेन तो का तो उत्तर मिल गया, तब अर्जुन ने कहा मेरे से भी पूछा था, क्या पूछा था, क्या पूछा था? बाहर खेत को खा रही है। महाराज कहते ये कल जो कह रहा था जिसको सुरक्षा के लिए घर में रखोगे वही तेरे घर की चोरी करके सबके ले जाएगा, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। इस वक्त सबसे, एक बार 3 पुलिस के कमिश्नर थे, एक इंग्लैंड का था, स्कॉटलैंड का था, एक अमेरिका का था, एक हमारे पड़ोसी देश का था, आपस में बात कर रहे थे। अमेरिका वाला बोल रहा है हमारे यहां अगर चोरी हो जाए तो 24 घंटे में हम उसका पता लगा लेते हैं। स्कॉटलैंड वाला बोला ठीक नहीं है, हम 12 घंटे से पहले चोर को पकड़ लेते हैं। तो हमारे वाले से पूछा पड़ोसी से, अच्छा तुम दोनों टाइम खराब करते हो, हमें 15 दिन पहले पता होता है कि कहां चोरी होनी है, प्लानिंग हम करते हैं, चोर हमने पैदा किए हुए, अपने आप थोड़ी पैदा हुए। तो जो रक्षक हैं वो भक्षक हैं, जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। भाई किसने मारा प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी को? उसके अंगरक्षक ने, जिसको रक्षक रखा था उसी ने मारा ना। चोर जिसके घर से चोरी होती है उस चोरी में वो उसके घर का चौकीदार ही मिला हुआ होता है, और किसी को क्या पता कि इसके घर में क्या चीज कहां पड़ी है। ये कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, ये कलयुग का रूप है। तब तीसरे भाई ने कौन सा प्रश्न बताया? स्त्री लड़के के पैदा होने के ऊपर खुश होती है, और लड़की पैदा हो गई तो समझती है कि बहुत बड़ा जंजाल आ गया। कौन? वो खुद ही माता है, और अपने घर में लड़की आने के ऊपर बहुत दुखी होगी, ये कलयुग का रूप। चाहेगी कि अभी नहीं, कुछ जमाना पहले लड़की पैदा होती थी तो मिट्टी डाल के एक पोटली में उसके नाक के ऊपर रख देते थे, अपनी आप बेचारी सांस बंद होकर मर जाती थी। हाँ, राजस्थान में ऐसे करते थे पहले लोग, जन्म लेते ही, अरे मां है वो खुद स्त्री है, अपने घर में बच्ची जन्म लेती है उसको खुश नहीं होती, खुशी होती नहीं है, और बुढ़ापे में मरते बच्ची ही काम आती है, पानी पिलाती है, बच्चा तो बदमाश शादी करके पत्नी के साथ भाग जाता और सारा कमाया हुआ पैसा भी ले जाता। ये सच है कि झूठ है? लड़की के जन्म के ऊपर खुशी होती नहीं है और स्त्री को नहीं होती है, ये आश्चर्य है। कल जो कितना बड़ा खतरनाक रूप धारण कर लिया, तो बहुत भयंकर यहां का अपराध। सबसे बड़े 2 ही अपराध इस वक्त कलयुग में हो रहे हैं, एक तो गौ हत्या हो रही है और एक भ्रूण हत्या हो रही है। बच्चे को जन्म लेने से पहले गौ हत्या होने से गाय के बाद मानव की जूनी मिलती है, उसकी मानव की जूनी में बाधा पड़ रही है, वो मानव बन नहीं सकता है, उसको फिर एक बार अपनी जहां आधा काम पूरा है उसको पूरा करना पड़ेगा। और जो मानव बन के यहां आना चाहता है उसको पहले से ही गर्भ में ही आने नहीं दिया जाता। ये तो अच्छा है अब अल्ट्रासाउंड बंद किया, नहीं तो लड़की बताता था अगर डॉक्टर लड़की है तो उसको नहीं 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 इसको गिरा दो गिरा दो। ये कलयुग का बहुत भयानक रूप है। चौथे भाई ने क्या पूछा, चौथे भाई से हाथी निकल गया सुई के, बच्चे का सालग्रह होगा जन्मदिन होगा या घर में शादी हुई तो 25-50 लाख खर्चा हो जाए तो चिंता नहीं है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी आए कि जन्माष्टमी के 11,000 रुपए देने, महाराज कहां कमाई है आजकल, पूंछ अटकी पड़ी है, पूरे का पूरा हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक जाएगी, महाराज अब बहुत समय अच्छा नहीं चल रहा है, अब कहां से आपको दे पाएंगे। और उसी दिन कोई उत्सव घर में होगा तो पानी की तरह हवाई जहाज में शादियां कर लेंगे और कितना खर्चा कर लेंगे, लेकिन धर्मार्थ किसी को 1 रुपया देने से भी उनको बहुत बड़ी, हाथी पूरा निकल जाए लेकिन पूंछ उनकी अटकी रहेगी। ये कलयुग का बहुत खतरनाक स्वरूप है। अब जरा देख लीजिए कि हम कितना खर्चा करके यहां से बद्रीनाथ जाते होंगे। एक आदमी बद्रीनाथ जाता है कितना खर्चा करता है, जी और फिर कुछ खाओगे पियोगे तो 10 रुपया की चीज 15 रुपए 25 रुपए की मिलती है, उधर 2.5 गुना मिलती है। मंदिर में कितना चढ़ा के आते हो भगवान बद्रीनाथ के, हाँ फटा हुआ कोई 5 रुपये का नोट होगा तो इसे खुजा के खड़ा करके डालेंगे अंदर, 20,000 तुम खाते हो और भगवान को 10 रुपया देने में भी तुम्हारे को पूंछ अटक जाएगी। अपने लिए तो इतना बड़ा खर्चा करके जाएंगे वहां, लेकिन जहां जिसको देखने जाते हैं उसको देने के लिए पूंछ अटकी पड़ी होगी, कोई नहीं देता है। ये सच है कि झूठ है, पर जितना अपने ऊपर खर्चा करे उससे ज्यादा तो भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। ऐसा कोई व्यक्ति वहां भगवान के पास जाता है तो भगवान बद्रीनाथ उसको दर्शन देके कहते हैं कि तुम जो ये पैसे लाए हो ना, क्योंकि तुम्हारे आप तुम पैदल चल के आए हो घर, तुमने रास्ते में तो 1,000 रुपया भी खर्चा नहीं किया, मुझे देने के लिए तुम 2 लाख रुपये लाए हो, बड़े अच्छे आदमी हो, तुम ये ले जाओ राधा कुंड में और जाके रघुनाथ दास गोस्वामी को देना, उनको राधा कुंड बनाना है। ऐसा कोई भक्त जाता है तो भगवान जो भगवान को देने जाता है उसका भगवान ऐसे काम में लगा लेते हैं जो भगवान बद्री नारायण ने वो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए राधा कुंड के निर्माण के लिए पैसे बद्रीनाथ ने भेज दिए वो व्यक्ति जो भगवान को देने गया था उससे। कहने का तात्पर्य ये है कि हाथी पूरा निकल जाएगा लेकिन पूंछ अटक जाएगी, जहां दान की बात आएगी वहां सबका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। और वैसे खर्चे के लिए कितना खर्चा बेकार में हो रहा है, अनाप शनाप कोई सोचो तो पता नहीं लगता है कितना बेकार में खर्चा हो रहा है, कितना हिस्सा बचत का अपना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ये किसी ने निर्णय किया ही नहीं है, हमारा काम कैसे चलेगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ जी कलयुग कह रहा था एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में, उसके ऊपर भी पत्थर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, हिलेगा नहीं आपसे, भगवान की भक्ति का एक ही रास्ता है कलयुग में, नाम स्मरण का एक ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन उसके ऊपर भी बाधाएं बहुत हैं। ये कौन भक्ति आपको देगा, कोई साधु प्रेम से अगर आपको भगवान का नाम जपने के लिए देगा तो ये बड़ा पत्थर एकदम वहां से उठ के चला जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। तो कलयुग में भगवान का नाम और भगवान के भक्तों से मिलेगा तभी भगवान को प्राप्ति करने का साधन सरल हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं, तो किसी ने पूछा कि कलयुग को तो मार ही देना चाहिए, जब पकड़ लिया गया था तो उसको मार दिया होता तो फिर सबकी जान छूट जाती। तो बोला अच्छे आदमी को अच्छी चीज दिखाई देती है, जिसको जैसा चश्मा है ऐसा ही रंग दिखाई देगा। परीक्षित महाराज भक्त थे, उसको कलयुग में कुछ अच्छे गुण दिखाई दिए, उसको अच्छे ही गुण कलयुग में दिखाई दिए, और विशेष रूप से दो अच्छे गुण दिखाई दिए। पहला ये अच्छा गुण कि जो चीजें तप से, दान से और ध्यान से, यज्ञ से नहीं मिलती थी, वो चीजें बहुत सरलता से कलयुग में हरे हरि कीर्तन से मिल जाएंगी। एक ये विशेषता कलयुग की है कि कलयुग का एक अर्थ है कलह का युग, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा होना, और दूसरा कली का अर्थ है केशव लयते इति कली, जो भगवान केशव को, कृष्ण को बहुत सरलता से प्राप्त करा दे, ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग को जो बहुत आसानी से लाके दे दे, केवल भगवान के नाम जपने से भगवान मिल सकता है। और दूसरा क्या कलयुग का बहुत सुंदर गुण है, अवगुण तो बहुत है, दूसरा कौन सा? बोला सत्य युग में कोई आदमी मन से गलत सोचता था तो उसको पाप लग जाता था, और जब तक अपने हाथ से अच्छा काम नहीं करता था तब को उसको फल नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग का ये एक विशेषता है कि आप जब तक कोई बुरा करोगे नहीं तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा। नहीं तो बुरे सोच तो सारा दिन बुरी सोच दिमाग में लगी हुई है, लेकिन दंड नहीं मिलेगा। अच्छा काम करो मत, सिर्फ अच्छा सोचो तो फल मिल जाएगा, ये कलयुग की विशेषता है। और हम भी 10 बार 20 बार इसी कथा को प्रवचन में सुनाया, हमने कहा सुबह उठ के आप कहा करो आज मैंने 10 गाय ने 10 क्यों, जब मन से ही देनी है, हजार गाय का दान कर दिया, 500 ब्राह्मण को भोजन खिला दिया, आज मैं एक मंदिर बना रहा हूं और एक धर्मशाला बना दी, मैं कह के थक गया, लेकिन मैं खुद ही नहीं करता, दूसरे कहां से करेंगे है? समझने के, इतना करने से फल मिल जाएगा। जब ये कहा कलयुग को जब स्थान दिया महाराज ने के ये, तो कलयुग हंसने लगा जोर से। तो परीक्षित महाराज ने कहा आप हंस क्यों रहे हो? बोला आप समझ रहे हो कि ये लोग भगवान का नाम जप के जाएंगे कलयुग में, मैं जब जपने दूंगा तब ना आप तो खुश हो रहे हैं कि रास्ता बहुत सरल है, लेकिन बड़ा पत्थर में डाल दूंगा, जब तक कोई साधु नहीं हिलाएगा तब इनसे हिलने वाला नहीं है, तो मैं इनको नाप जपने दूंगा ये संभव नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। अब बताइए कलयुग के पास एक कंबल है, वो 4 बजे सबके ऊपर डालता है कि कोई उठे ना। तो एक बार हमने वृंदावन से कजलू को जाते देखा, उसके कंबल के अंदर 2 होल पड़े थे, पूछा ये क्या है? बोला ये 3:30 बजे से लाते मारना शुरू करते, कंबल ही फाड़ दिए उठ जाते हैं, यहां काम नहीं कर चलता है। बाकी कलयुग का कंबल पूरी दुनिया को 4 बजे सुलाने के लिए डालता है। सिर्फ भक्ति के ऊपर प्रभाव वृंदावन में नहीं है, यहां सिर्फ कलयुग के प्रभाव से बचना संभव है, बाकी जगह पे कलयुग पहले उठने ही नहीं देगा, भगवान का नाम लोगे कहां से? और भगवान का नाम लेना शुरू करोगे दिमाग में भूली हुई सब बातें उसी वक्त याद आएंगी। आपको एक अच्छा फार्मूला बताऊं, आप कोई चीज नहीं मिलती हो, कोई घर की चीज गुम हो गई हो, तो माला उठा के जपने शुरू करो, आपको सब याद आ जाएगा। ये याद करने का सबसे अच्छा साधन है, तो इसी बहाने भगवान का नाम ले लिया करो। क्या हरे कृष्ण, अरे 100 पुरानी बातें याद आ जाएंगी, जो कभी याद नहीं थी वो सब उसी वक्त याद आती हैं। ये कलयुग ने कहा है कि इतना आसान नहीं है कलयुग में, तो ये सब बातें ये बता रही हैं कि अधिक समय घर के अंदर रहना, इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में गृहस्थ के बाद वनप्रस्थ आश्रम है, एक दूसरा आश्रम है, पति पत्नी को, बच्चों को अपने काम काज को चलाओ और आप आके वृंदावन में रहो, और जो बच्चों को जो दे दिया अपने कुछ पूंजी लाके यहाँ रख लो, और 2 टाइम की रोटी खाओ और भगवान का भजन करो बैठ के, किसी के दरवाजे के ऊपर पालतू कुत्ते की तरह जीने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सा रास्ता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य गर्भ त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे, अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। एक बेटे का बाप अमेरिका गया था, वैसे बुलाते नहीं है, उसको बुलाया, माता पिता को बड़े खुश हुए। तो थोड़े दिनों के वापस लौट के आए तो हमने पूछा, सुनाइए आपको बुलाया क्यों था? बोला उनको बेटा हुआ था और उनको पालने के लिए बाहर से किसी को रखते हैं तो इतना खर्चा लगता है, तो इसने देखा कि माता पिता आएंगे, बच्चे की देखभाल करेंगे, किराए में महंगे नहीं है, बाहर तो बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, एक आदमी रखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बोला फिर आप रह जाते, वहां से वापस क्यों आए? बोला हमारी तबीयत खराब हो गई, हमने बोला कहीं यहां मर गए तो बेटे को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वापस जाते हैं, अपने घर में मरेंगे, कम से कम भारत में खर्चा तो मरने का कम है। घर परिवार में मरने से दूर जाना चाहिए, ऐसे क्यों वैदिक शास्त्र में लिखा है? क्या इसका कोई कारण आपको समझ में आता है? मरते समय आसक्ति होगी घर में, हर एक चीज में आसक्ति होगी, तो दूसरे जन्म में उस आसक्ति को पूरा करने के लिए वहीं आना पड़ेगा। जब घर से बाहर कहीं मरेगा तो फिर वो आसक्ति से तो छूट ही जाएगा ना, तो आसक्ति नहीं रहेगी। और वृंदावन में अगर कहीं उसका प्राण त्यागन होना है तो चार भक्त कहीं से बैठ के चार हरि नाम कर लेंगे, अथवा जहां पड़ा होगा तो कोई कहेगा अरे कैसी घाट पे गिरा था, तो कम से कम वृंदावन के स्थान का नाम कान में तो आएगा। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए मरने के लिए जहां भगवान की स्मृति दिलाने वाला कोई हो। और घर में मरने का मतलब घर की यादगिरी आएगी तो वापस घर में आना पड़ेगा। वो पुरानी कथा नारद जी की तरह, वो घर के अंदर कुत्ता बन के भी दरवाजे के ऊपर बैठेगा वापस आके, अरे मर गया अभी तो चलो। बोला अब कहां चलो, ये बच्चे इतने मूर्ख हैं, कितना खाना बचता है, मैं नहीं खाऊं तो कितना नुकसान होगा, मैं तो यही रहता हूं और ये इस घर खुला छोड़ के चले जाते हैं और मैं नहीं बैठा रहा, कोई चोरी करके जाए तो। वो बाप उधर ही कुत्ता बन के दूसरे जन्म में आता है मरते मरते, अगर उसकी आस्था अपने घर में रह जाती है तो, क्योंकि कुत्ते की तरह तो रह ही रहा था तो मरने के बाद कुत्ता ही होगा ना, जो रह ही कुत्ते की तरह रहा था तो कुत्ता ही होके वापस आएगा और उसी घर के सामने बैठा होगा और अपने कुत्तों के जब समाज में जाएगा बोलेगा ये घर मैंने बनाया था, देखो कैसे मेरे बच्चे रह रहे हैं और मैं रोज इधर आराम से खाता हूं, चौकीदारी अपने घर की कर रहा हूं, बड़ा मजा आएगा उसको। तो कहां मरना चाहिए भाई? वृंदावन में मरना चाहिए। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो उसे महिमा में मतलब ग्लोरियस महिमा में मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु को बड़ी महान मृत्यु कहते हैं कि कम से कम वो मोह के बीच में नहीं। और हम तो मरते समय सबको बुलाना चाहते हैं, सब चारों ओर बैठो, बेटा बेटी पोता पोती और सबको देखते देखते मरना चाहते हैं। ये सामान्य व्यक्ति मरना कैसे चाहता है और वैदिक शास्त्र कैसे? एक आदमी था बूढ़ा, मर रहा था, बेटे सब परिवार सामने बैठा था, बाबा ऐसे बोलने लगा, तो बच्चों ने बोला पता नहीं क्या कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, हो सकता है कहीं पैसा वैसा गाड़ के रखा हो, बोलना चाहता हो तो जरा दो शब्द बोले बताए तो सही, क्या कहां पड़ा है। डॉक्टर को बुलाया, बोला जितना पैसा लगे ले लो, एक ऐसी दवाई दो कि ये दो शब्द बोले, कुछ बोलना चाहता है। तो डॉक्टर ने भी कुछ दवाई बोला, ठीक है दो जो लेना था 5-25 हजार ले लिया। और बाबा को बोला क्या कहना चाहते हैं बाबा बोलो। बोला देखो बकरी झाड़ू अभी मेरे जीते जी खा रही है, मेरे मरने के बाद तुम घर कैसे संभालोगे? बाबा मर गया। बाबा को कहना क्या चाह रहा था कि बकरी झाड़ू खा रही है सब, और 25,000 रुपया डॉक्टर को दिया और बाबा बकरी को देखते हुए मरा, तो बकरी मरेगा और क्या। तो घर में मरने वाले की ऐसी आस्था होगी, इसलिए परिवार वालों से दूर और भगवान के भक्तों के बीच में उत्सव के साथ, उत्सव कहा जाए मनाए, कि मैं अब अपने घर जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, ऐसा किसी को पता हो तो बड़ी खुशी हो। मरने से पहले मैं अपने घर जा रहा हूं ये पता हो कि ये संसार हमारा घर नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूं। इसलिए साधु संत महात्मा की मृत्यु को उत्सव मनाते हैं, क्योंकि अपने घर चला गया। कहा गुजरात में किसी के मृत्यु के ऊपर भक्तों को बुलाया, तीसरा दिन मृत्यु का था और भक्त कीर्तन में नाच रहे थे। तो किसी के घर में मृत्यु हो और भक्त नाचे कीर्तन करते हुए तो लोग तो हंसी उड़ाते हैं कि इनके घर में मृत्यु है, नाच क्यों रहे। और मेरे को कहा कि आपको प्रवचन देना, मैं वहां पहुंचा, भक्त नाच रहे। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग संकोच करेंगे, बाहर लोग तो कह रहे थे देखो तो मर गया है या नाच रहे। तो मैं अंदर गया, मैं कहा देखिए भाई आपके घर में लड़की की जब शादी होती है तब आप लोग नाचते हैं। बोला हाँ हम नाचते हैं। मतलब क्यों नाचते हैं? बोला बच्ची अपने घर जा रही है इसलिए हम नाचते हैं। तो बस मैंने कहा आप समझ लो, भक्त जहां आते हैं और कीर्तन करते हैं इसका मतलब उस घर में मरने वाला अपने घर चला गया है, इसलिए हम भी नाचते हैं यहाँ। भाई पहले नाचने को तो उनको प्रूव करके देना है कि क्यों नाच रहे हो। हम मरने को मानते हैं कि अपने घर जाना, तो जैसे बच्ची की शादी में रोना तो आता है लेकिन दिल में बड़ा उत्सव उत्साह होता है, खुशी होती है, नाचना होता है। ऐसे साधु के मृत्यु के ऊपर नृत्य करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि अपने घर चला गया। तो ये सारा पढ़ने के बाद आप आज जाके 15 मिनट लिखना अपनी कॉपी में हम कैसे मरना चाहते हैं, और लिख के रख देना कि हमको जब यहां से जाने का समय हो तो आपके मन की भावनाओं को लिखना कि हम कैसे स्थिति में कहां और कैसे इस दुनिया से जाना चाहते हैं। ये भी थोड़ा सा आप संकल्प बनाने का प्रयास करो। क्या एक भक्त ने गाया है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, प्राण बंसी बट हो, जमुना जी का तट हो, सांवरा निकट हो। ये एक भक्त के मरने की इच्छा है, मरने को भी गाया है उसने प्रेम से। हमको तो मरने के नाम से भय लगता है। तो ऐसे मन का कुछ भाव के 10-20 भक्त कीर्तन करते हो, घर में प्रसाद बनता हो, सबको प्रेम से खिलाया जा रहा हो, उस वक्त मेरे प्राण निकले, ऐसा कुछ जिसका जो भाव हो, ऐसा कम से कम विचारधारा पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। क्योंकि जो संकल्प होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हमारी भावना को जानेंगे तो व्यवस्था वैसी कर देंगे। लेकिन जाना तो है एक दिन, तो उसके लिए भी ये दो लाइनें लिखनी चाहिए। अब दूसरी लाइन है, महिमामय मृत्यु कहते हैं, किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव यात्रा में ले जाए, भले ही वो उसे देख न पाए। इस प्रकार वो जाने बिना ही जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहां जाना होगा वो प्रसन्न रहता है। इसका क्या अर्थ है, पढ़ा है किसी के बाद अंग्रेजी में? इस प्रकार वो जाने बिना के जब वो अपना शरीर छोड़ता है, जाने बिना कि जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहां जाना होगा वो प्रसन्न रहता है। क्या है ये? इज हैप्पी, मृत्यु उसके लिए दुखदाई नहीं होता है और वो शांति से शरीर छोड़ देता है। बात तो गंभीर है, यहां प्रभुपाद जी का भावार्थ समाप्त होता है। हमारे लिए संदेश क्या है? हमारे लिए संदेश ये है कि एक समय के ऊपर बच्चों को काम काज दे के अपने आप को रिटायर करना चाहिए, और व्यवस्था बना के आके वृंदावन में मायापुर में जहां भगवान का लीला स्थल है वहां रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो परिवार वाले, आपका बेटा हो सकता है कि आपसे प्रेम करता हो, लेकिन बेटे के साथ आई भाई उसकी पत्नी वो आपको चाहेगी ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसके बच्चे वो कुछ आपसे ज्यादा स्नेह करेंगे ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो बेचारे बच्चे को मुश्किल में मत डालो और सुख से उसको अपने घर में रहने दो और उसके लिए अच्छा उदाहरण बनो ताकि वो भी अपने समय के ऊपर घर को छोड़ दे। उसके लिए भी उदाहरण बनो और अब समय से पहले अच्छा निर्णय ले लो। हरे कृष्णा। ये कपिल देव, ये जिस घर में बात हो रही है उन्होंने ऐसे ही किया है, इसलिए भागवत में लिखा है। ऐसे नहीं करता है उसकी बात लिख, कहने वाले की बात नहीं लिखी जाती, करने वाले की बात है। तो क्यों भाई माताजी लोग आपको कैसे लगता है, ये सच है झूठ है? लेकिन सच के ऊपर चलने वाले बहुत कम है, बहुत मुश्किल। झूठ बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। जी बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, पहले सुन सुन के अपने आप को पक्का करना पड़ेगा। इसलिए साधु संघ और शास्त्र का श्रवण ये हमारे को जगाएगा और हम एक दिन निर्णय ले पाएंगे। धृतराष्ट्र जैसा मोहग्रस्त भी अगर घर छोड़ सका विदुर की कृपा से, तो प्रभुपाद जी के कृपा के ऐसे सिद्धांतों को स्थापित किया है, हम लोग घर छोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है और अच्छा है। बच्चे बच्चों को काम करने देना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा बैठना ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहिए प्रभु जी? वो शरीर को आग बेटा लगाएगा तो उसकी आवश्यकता होती है जो घर में मरता है। और ये भागवत धर्म में कर्मकांड से बहुत ऊपर के स्थान का धर्म है। भक्त आग लगाएंगे तो भी जल जाएगा, बेटे नहीं लगाई तो ऐसे थोड़ी उठ के खड़ा हो जाएगा मेरे बेटे को बुलाओ। पहले भगवान से लिखवा लो कि मेरे को 5:15 पे मेरे प्राण निकाल लेना, तब बच्चे को बुला लेना। ऐसे नहीं बच्चे को बुलाओ उसको देख के मरना ही बंद हो जाए फिर सारे घर का झमेला याद आ जाए, मरने की गारंटी हो तब बुलाना। ऐसे गलत धारणाएं बनी हुई है कि मरते मैं बात भी नहीं कर रहा, तुम बात करते क्या, वो बैठ जाता फिर और दुखी करते उसको, तो मैं देखता और दुख बढ़ जाता उसका। कोई बात नहीं, बच्चे वैसे आग ही लगाते हैं, जिंदा भी आग लगाते हैं, मरने के बाद ही आग लगाते हैं, अच्छा काम तो करते नहीं है। जीते भी आग, जीते जी को जलाते हैं, बाद में शरीर को जलाते हैं, काम जलाने का ही करते हैं, इसलिए पहले निकलना ही अच्छा है। उसकी भी अगर तात्पर्य कोई लिखे कि बच्चे की आग लगाने के बगैर उसका उद्धार नहीं होगा, इसका मतलब है घर में वो आग नहीं लगाएगा बच्चा तब तक वो घर नहीं छोड़ेगा, इसका तात्पर्य ये इसका नया परपर्टन लिख दो उसमें। हरे कृष्णा।